ओम शांति। बहुत सुंदर निया बहन जी ने इस स्थान का महत्व बताया और हम अपना भाग्य समझते हैं कि हम भी यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। मुंबई में तो थे परंतु साउथ मुंबई में बहुत कम आना हुआ और आज विशेष इस भट्टी के लिए तो और भी अधिक खुशी है। बाप दादा दादिया सबके सूक्ष्म वाइब्रेशंस यहां पर अनुभव होते हैं तो ऐसे दिव्य ऊर्जावान स्थान पर आकर आशा करते हैं कि आज सभी अपने को अलौकिक शक्तियों से भर देंगे। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं उस पर गिरना है, बिछड़ना है, संभलना है, फिर उठना है, फिर चलना है, चढ़ना है, दौड़ना है। ये मार्ग कठिन जरूर है परंतु भगवान का साथ है। इसी के साथ आज की इस तपस्या की हम शुरुआत करेंगे। बहुत समय पहले कोई एक गरीब व्यक्ति किसी राजमार्ग से जा रहा था और एक तालाब वहां पर था और उसे एक चमकीली वस्तु उस तालाब में दिखी। हार की जैसी वो वस्तु थी और उसे लगा ये जरूर हो ना हो राजसी हार है, हीरो का हार है। थोड़े ही समय पहले वहां के राजा ने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक सुंदर हार दिया था और उस राजकुमारी का उस हार में बहुत मोह हो गया था और एक दिन अचानक वो हार गुम हो गया। बहुत ढूंढा गया परंतु कहीं नहीं मिला। राजकुमारी बहुत उदास थी क्योंकि हार खो गया था। सोचा शायद किसी चिड़िया ने, पक्षी ने वो हार उठाकर कहीं फेंक दिया और उसी दोपहर को इस व्यक्ति को उस गंदे तालाब में वो हार दिखाई दिया और उसने भी ये बात सुनी थी कि राजकुमारी का हार चोरी हो गया और जो ढूंढ कर देगा उसे इनाम मिलेगा। तो वो हाथ डालता है उस पानी में परंतु वो हार हाथ में नहीं आता और पानी गंदा होता है बहुत। उसे लगता है केवल हाथ डालने से नहीं होगा, उतरना पड़ेगा। तो वो उस पानी में उतरता है पैरों तक, फिर सब जगह छानता है, नहीं मिलता। फिर बाहर आता है, थोड़ा उदास होता है और फिर तो पूरा ही कूद जाता है उस गंदे पानी में क्योंकि उसे वो हार चाहिए था। फिर भी नहीं मिलता। फिर बाहर आता है तो देखता है हार तो है, चमक तो रहा है कुछ। उधर से एक साधु आता है तो साधु पूछता है क्या हुआ, परेशान दिखाई दे रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें दूसरों को नहीं बताई जा सकती। सोचता है तो साधु पर भरोसा नहीं साधु का भी। धन के सामने किसकी बुद्धि कब फिर जाए बता नहीं सकते। पर वो साधु कहता है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कहता है देखो वो सामने हार तालाब में है और राजकुमारी का हार खो गया है और वो मुझे दिखाई दे रहा है, पर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश की, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो इसमें? वो साधु कहता है क्यों नहीं, हार नीचे नहीं ऊपर झाड़ की टहनी पर लटका हुआ है। हार नीचे नहीं है, जो नीचे दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, मिरर इमेज है उसकी जो ऊपर है, उसकी जो असली है, उसकी जो ओरिजिनल मौलिक है। परंतु सारी मनुष्यता, सारी मनुष्य जाति, सारे ही व्यक्ति उसी प्रतिबिंब के पीछे, उसी रिफ्लेक्शन के पीछे है, वो जो आर्टिफिशियल है, वो जो रियल नहीं, वो जो केवल प्रतिबिंब, वो जो केवल प्रतिध्वनि है, उसकी जो अनहदनाद है। हम किसके पीछे हैं? हम किसे देख रहे हैं? जो सुख ऊपर लटका है उसका नीचे जो दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन मात्र है, वह अतिंद्रिय सुख ऊपर, इंद्रिय सुख नीचे, वह ईश्वरीय प्रेम ऊपर, ये सांसारिक प्रेम नीचे, वह ईश्वरीय संपदा ऊपर, ये संसार की संपदा नीचे, वह तीव्र पुरुषार्थ ऊपर और जो हम कर रहे हैं वो नीचे, वो भगवान के महावाक्य, वो मुरली ऊपर और हम जो जा रहे हैं सेवा केंद्र पर और अपने डायरियों में नोट्स लिख रहे हैं और आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं क्योंकि हम सेवा केंद्र पर जाते और मुरली सुनते, परंतु उसके असली स्वरूप से फिर भी बहुत दूर। हम भी उठ रहे हैं अमृत वेला, सुबह वरदान में कहा नींद का साइलेंस साधारण, वो नीचे ऊपर अतिंद्रिय सुख। हम जहां दौड़ रहे हैं, जो दौड़ है हमारी संसार की, संसारिक प्राप्तियों की, वो नीचे और ऊपर कुछ और है जहां से हम भटक गए। तो क्या हम करें जो इस संसार में तो रहे परंतु हमें असली चीज दिखाई दे, हमें अपना ध्यान उस रियल से हटाना नहीं है, क्योंकि नीचे भूल भुलैया है, नीचे भटकाव है, नीचे संसार के वाइब्रेशंस है, ऊपर कुछ और जो ऊपर को भूल जाता है और केवल नीचे अटक जाता है। साइकोलॉजी में कहा जाता है देयर आर टू सेल्फ, दो सेल्फ है, हायर सेल्फ लोअर सेल्फ, हायर कॉन्शियसनेस लोअर कॉन्शियसनेस, हायर फोर्स लोअर फोर्स, द डिवाइन द अनडिवाइन, दैवी सत्ता आसुरी सत्ता एक ही मनुष्य में। जब ऊपर ध्यान रहता है तो व्यक्ति उन्नति करता है, जब नीचे की ओर जाता है तो देहभान में आता है और नीचे नीचे गिरता है। हमारा ध्यान कहाँ है? स्वयं से बात करनी है। स्वयं को पूछना है। एक और सुंदर उदाहरण है, दो सूफी फकीर किसी मार्केट से, जहां पर बहुत आवाज है, कोई बाजार कोई मंडी जहां पर खरीद फरोख्त चल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीजें बेची जा रही है खरीदी जा रही है, शाम का समय है, बहुत आवाज शोरगुल है, और उस आवाज उस शोरगुल में एक फकीर कहता है कि शाम का समय है, मुझे दूर मस्जिद की अजान सुनाई दे रही है। तो दूसरा पूछता है, तुम्हें कैसे सुनाई दे रही है इतनी आवाज में, यहाँ तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और वो भी तुम्हें अजान सुनाई दे रही है, और वो भी कहीं दूर मस्जिद से आ रही, यहाँ तो लोगों की आवाज है केवल, संसार की बातें चल रही है, इसमें तुम्हें वो सुनाई दे रहा है। तो वो व्यक्ति कहता है, जहां जिसका ध्यान होता है उसको वही सुनाई देता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, वो अपने खीसे से एक सिक्का निकालता है और उस सिक्के को उछालता है उस बीच बाजार में, और जैसे ही वो सिक्का नीचे गिरता है ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या गिरा क्या गिरा क्या गिरा, सिक्का गिरा किसका है किसका है, आवाज किसी को कुछ नहीं आ रहा था, परंतु सिक्के की आवाज सबको आ गई। जहां पैसे उछाले जाते हैं वहां एकदम कान पकड़ लेता है आवाज को, चाहे किसी भी वातावरण में हम रहे, यहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, यहां हमारा तन होगा वहां मधुबन में हमारा मन होगा, वहां परम धाम में हमारा मन होगा। तो आज कैसे ऊपर देखा जाए और कैसे इस संसार में रहते हुए ध्यान उस की ओर रखा जाए, उसकी हम चर्चा करेंगे। बैलेंस सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी आर्ट इस ब्राह्मण जीवन में, हमें भी ये कला सीखनी है। संसार छोड़ के नहीं जाना, सबके बीच में ध्यान ऊपर, सबके बीच में ध्यान उस परमात्मा शब्दों की तरफ। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे 16 प्रकार के बैलेंस, 16 टाइप्स ऑफ बैलेंस, जिसकी हमें रोज चेकिंग करते रहना है कि क्या ये सारे बैलेंस मेरे जीवन में है, जब ये सारे बैलेंस होंगे तब जीवन संतोष से भरेगा, क्योंकि जहां बैलेंस है वहां क्या मिलेगी, ब्लेसिंग, और जहां ब्लेसिंग है वहां लाइफ कैसी होगी, ब्लिसफुल आनंदमयी, जीवन आनंद की पुलक से भर जाएगा। और जहां बैलेंस ही नहीं तो ईश्वरीय वरदान भी वहां लौट जाते हैं, जीवन दुखी होता है, उदास होता है, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ द माइंड, अति सर्वत्र वर्जते, मनुष्य का स्वभाव है अति में डोलने का, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, पेंडुलम की तरह घूमता है, कभी एकदम ही वैराग आता है संसार से तो फिर कभी एकदम संसार से चिपक जाता है, कभी ब्रह्मचर्य खींचता है कभी अब्रह्मचर्य खींचता है, कभी स्वाद खींचता है तो कभी स्वाद से वैराग आ जाता है, कभी इधर कभी उधर, बीच में नहीं रह पाता। और जब वो राइट की तरफ जा रहा है, शक्ति इकट्ठा कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है लेफ्ट की तरफ जाने का, और हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। भोग की तरफ व्यक्ति ज्यादा जाता है, फिर वैराग उदय होता है, फिर वैराग खींचता है। वैराग की तरफ अति में चला जाता है, फिर भोग खींचता है। इधर और इधर, इधर और इधर, बीच में खड़ा करना है उस पेंडुलम को। तो कुछ बैलेंस हमें अपने जीवन में लाने हैं। इसको हम तीन भागों में विभाजित करेंगे, शारीरिक फिजिकल, मानसिक मेंटल, स्पिरिचुअल। शारीरिक में तीन, सबसे पहला बैलेंस भोजन, दूसरा नींद और तीसरा एक्सरसाइज व्यायाम। ये तीनों बैलेंस शरीर के स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भोजन संयमित, सम्यक आहार, राइट डाइट में तीन चीजें हैं। एक तो उत्तेजना उत्पन्न ना करे, एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाला भोजन ना हो, बहुत ज्यादा तीखा और बहुत ज्यादा मसाले जिसमें है, वो भोजन बुद्धि को अस्थिर करेगा क्योंकि राजसिक है। और जो बहुत ज्यादा मीठा है और बहुत ज्यादा चटपटा और खटपटा है, राजसिक है, वो योगी के मन को अस्थिर करेगा। कल की अव्यक्तवाणी संडे की, बाबा ने लौकिक डॉक्टरों की मिसाल दी है। वो डॉक्टर भी कहते हैं ज्यादा तला हुआ और भुना हुआ और पकाया हुआ। बाबा प्रत्यक्ष फल की बात कर रहे हैं। अभी सोचा और किया, पर बच्चे कहते हैं बाद में करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। ये हुआ भविष्य का फल, ये हुआ जला हुआ और भुना हुआ फल। सबसे पहले अपने भोजन की चेकिंग करनी है। अनियमित, असंयमित, अत्यधिक, ज्यादा बीमारी संसार में किस वजह से है? ज्यादा खाने से या कम खाने से? कभी सुना इसने भोजन कम किया इसकी वजह से ये बीमार पड़ गया? कम ही सुना होगा ऐसा, हो भी सकता है। पर ज्यादा बीमारियां किस वजह से है? ओवर ईटिंग। An overeating is a sign of depression. Depression में दो चीजें होती है, एक तो बहुत खाता है या बिल्कुल छोड़ देता है, या फिर कभी कभी बहुत खाता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं खाता। Alternate, कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, कभी इस पोल की तरफ कभी इस पोल की तरफ, बाइपोलर, इधर और उधर। सबसे पहले योगी जीवन में अपने भोजन की चेकिंग करनी है। तो सबसे पहली बात बताई, उत्तेजना करने वाला ना हो। दूसरा, निद्रा और प्रमाद लाने वाला ना हो, स्लीप इंड्यूसिंग फूड, उसकी मात्रा संयमित हो। मेडिकल में कहते हैं पेशेंट जितना खाता है उससे आधा पेट अपना और आधा डॉक्टरों का भरता है। बहुत ज्यादा रहम दिल है, वो नहीं चाहता कि डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाए। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कभी कहा था, क्या आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जिसने इस बात के लिए पश्चाताप किया कि मैंने कल भोजन कम खाया था? कल भोजन कम क्यों खाया मैंने? ज्यादा खाना चाहिए था, इसके लिए किसी ने पश्चाताप किया आज तक? किया हमेशा किया होगा तो इसलिए किया, कल ज्यादा खा लिया, आज एसिडिटी गैस और सब कुछ हो गया, कल सुबह मैंने नाश्ता क्यों कम किया, इतना अच्छा नाश्ता था, ज्यादा करना चाहिए था, कल के लिए बात कर रहे हैं। उस प्रेसिडेंट ने कहा है कि nobody has ever repented for having eaten less food yesterday। तो इतना ना खाओ कि मुरली क्लास में निद्रा लोक में चले जाए, और अमृत वेले निद्रा लोक में, और सूक्ष्म अवज्ञा हो जाए, और फिर मन भारी हो जाए। आज सुबह के वरदान में कहा, भोजन ना अति ऊंचम ना अति नीचम, एकदम भूखे ही नहीं मर जाना है, छोड़ ही नहीं देना है। अब ये क्लास सुनकर एकदम वैराग आ गया, अब तो 10 दिन के अंदर 10 किलो वजन कम करना है। ऐसा मत कर देना, डाइट चेंज शुड बी एन इवोल्यूशन नॉट अ रिवॉल्यूशन। क्रांति नहीं करनी है डाइट में कभी भी, क्रांति करोगे तो धड़ाम से नीचे गिरोगे। किसी का सुनकर किसी का देखकर कभी नहीं करना, हर एक की शरीर अपना अपना है, प्रकृति अपनी अपनी है। नॉट रिवॉल्यूशन, क्रांति नहीं, इवोल्यूशन, धीरे धीरे समझ समझ के, शनै शनै जानकर, पढ़ के, डाइट को स्टडी कर कर। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, कंट्रोल ऑफ पैलेट एंड ब्रह्मचर्य आर इंटरलिंक्ड, विदाउट कंट्रोल ऑफ पैलेट ब्रह्मचर्य इज इम्पॉसिबल, इंटेलिजेंस इज हाईजैक्ड बाय हॉर्मोन्स। ये दूसरा। तीसरा, डाइट वो हो जो स्वास्थ्यवर्धक हो, ऊर्जा प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, इनविगोरेटिंग हो, रेजिनुएटिंग हो, शक्ति का अनुभव हो। तो सम्यक आहार में ये 3 चीजें हैं। अत्यधिक उत्तेजना ना करे, आलस प्रमाद और निद्रा ना लाए, और तीसरा स्वास्थ्यवर्धक। जो सबसे पहला बैलेंस है भोजन का, दूसरा बैलेंस है नींद। कितनी नींद करनी चाहिए योगियों ने? 4 घंटा, रात में 4 घंटा, और दिन में नींद, दिन भर नींद, योग में नींद, मुरली में नींद, क्लास में नींद, काम करते समय नींद, नींद का भयंकर प्रकोप, एपिडेमिक ऑफ स्लीप, जहां जाओ वहां नींद और नींद और नींद। हर एक को अपनी नींद सेट करनी है, कम से कम 6 घंटा 24 घंटे में। वैसे तो मुरली में आया है, वो संसार के लोग 8 घंटा सोते, तुम योगियों की नींद आधी होनी चाहिए। एक ही बार आया ऐसा कर मुरली में ये वाक्य, अभी 2-3 मास पहले भी आया था, वो एक ही मुरली है जिसमें ऐसा बाबा ने कहा है। परंतु हर एक को अपनी नींद सेट करनी है, नहीं तो मुरली क्लास में नींद ब्राह्मणों की कैटेगरी से सबसे पहले वो है जिन्हें अमृत वेला नींद आती है। किस किस को आती है? बाकी लोग सामने देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे बाजू वाले, एकदम इधर उधर नहीं देखना, सामने देखना केवल। मुरली में नींद वाले भी है बहुत सारे। और फिर काम करते समय, सेवा करते समय नींद, मेडिटेशन हॉल में मनोरिंद्र दादी मुरली पढ़ रहे थे और सामने माताएं बैठी थी, सब सो रही थी। दादी ने कहा मुरली के बीच में सब उठ जाओ और सब पीछे जाके खड़ी हो जाओ दीवार से, तो सारी माता उठ गई और दीवार से जाके खड़ी हो गई। मुरली चालू हुई पर माताएं नींद में ऐसी मारती थी कि खड़े खड़े नींद चालू कर दी। भयंकर प्रकोप, या फिर नींद तो की परंतु उठते ही फ्रेश नहीं लगता है कईयों को, कईयों को नींद ही नहीं आती है, एक एक बजे तक, दो दो बजे तक, और वहां फिर माया आ जाती है। रात का समय, नींद नहीं आ रही, तो ये भी अपना काम करेगा कुछ ना कुछ। तो सम्यक निद्रा, राइट स्लीप सेट करनी है, रिसर्च करना है स्लीप हाइजीन के विषय में, स्लीप रिचुअल्स के विषय में, कैसे सोए, सोने से पहले कौन कौन सी चीजें करें, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाए अगर रात में कोई इमरजेंसी नहीं है तो, आधा घंटा पहले कम से कम, बेड से दूर, और उठते ही इसको नहीं देखना है किसी ने क्या भेजा है। अपनी नींद को सेट करना है रात में। अगर दिन में किसी को टाइम नहीं मिलता है, हर एक को अपनी अपनी कंडीशन देखते हुए नींद ठीक करनी है। हर एक की परिस्थिति अपनी अपनी है, रहने का स्थान, दिनचर्या, काम सब अलग अलग है, पर बैठ के सोचना है और उसको सेट करना है। अति में नहीं जाना है, जैसे भोजन की अति में नहीं जाना है, नींद की भी अति में नहीं जाना है। एक व्यक्ति था जिसने कहीं सुन लिया भोजन करना पाप है, ऐसे हजारों धर्म और संप्रदाय है संसार में, तो उसने भोजन बंद कर दिया और फिर चार दिन के बाद भयंकर भूख लग जाती थी, कुछ भी खा लेता था और उसकी उससे पाप होता था। फिर भगवान से प्रार्थना करता था, मुझे माफ कर दो, मेरे से पाप हो गया। जो उसको सिखाया गया, जो उसने किताबों और शास्त्रों में पढ़ा, व्यक्ति वही मानता है, नीति अनीति की बात नहीं, वही उसके लिए नीति है। तो उसने सोचा अब यह संसार छोड़कर जंगल में चला जाऊं, और वो जंगल में चला गया, वहां एक कमरा ले लिया, वहां कोई था और वहां रहने लगा। तो उसकी पत्नी ने एक बार उसको फूल भेजे ग्रीटिंग्स के लिए, बहुत दिनों से उसकी याद आ रही होगी, तो उसने पत्र में रिटर्न लिखा, थैंक्स फॉर द बुके, फॉर द फ्लावर्स, दे वर वेरी स्वीट। उसी को खा लिया उसने, वेरी टेस्टी फ्लावर्स वर, वेरी टेस्टी। फिर कुछ भी खा लेता है व्यक्ति। तो सबसे पहला बैलेंस भोजन, दूसरा बैलेंस नींद, तीसरा बैलेंस एक्सरसाइज। यहाँ कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज रोज करते हैं? एक्सरसाइज में आसन, प्राणायाम कुछ भी आएगा। अभी अभी योगा डे हुआ, बहुत कम सब करते हैं, उसमें वॉकिंग भी आएगा। ये शरीर लचीला हो, लोच हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, रेजिलियंस हो शरीर में, उसी तरह शरीर रहा कि जहां पर जरा भी एक्सरसाइज नहीं, उसमें वॉकिंग नहीं, तो चर्बी इकट्ठा होगी, जड़ता आएगी शरीर में, मुड़ेगा नहीं, फिर ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, फिर बैठेंगे तो हलचल कुछ ना कुछ होते रहेगा उसको। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक्सरसाइज इज मस्ट। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो कर ही सकते हैं, वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मन को फ्रेश करता है, प्रकृति के सानिध्य में आत्मा जाती है, खुली हवा में मन खुल जाता है, चिंतन की धारा तेज होती है। स्वयं को एक टॉपिक दे दो, चौपाटी इधर ही है, लॉन्ग वॉक। एक विदेशी लेखक ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, मेरा और मेरे पिताजी का ऐसा भयंकर झगड़ा हो गया, रात भर झगड़ा चला, और सुबह मैंने कहा, उन्होंने कहा कि एक तो तुम इस घर में रहोगे या मैं, तो मैं भी बहुत गुस्से में था, मैंने कहा मैं नहीं रहता हूं आपके घर में, मैं जा रहा हूं, और गुस्से में घर से निकल गया वो। अब गुस्से में निकला, पैसे कुछ थे ही नहीं, बाद में पता चला घर से बाहर जाने के बाद कुछ भी नहीं है हाथ में, तो क्या करे बेचारा, टैक्सी के लिए पैसे नहीं, जाए कहां, तो पैदल चलने लगा, अमृत वेले का समय, ब्रह्म मुहूर्त और वॉकिंग चालू चालू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सुबह सुबह धीरे धीरे सुबह होने लगी और उस शांत वातावरण में अकेला समुद्र किनारे पर चलता गया चलता गया चलता गया और 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और चलते चलते मन उसका इतना शांत हो गया और उसे समझ में आया गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, झगड़ा तो मैंने ही किया। और वो वापस लौट जाता है। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग, चलने के सैर करने के फायदे, माइंड जो भारी है वो हल्का हो जाता है। अगर कोई भी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है या नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो हर एक कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता हमें टाइम नहीं है, जगह नहीं है, टेरेस है, गार्डन है, कुछ भी नहीं तो सड़क तो हमेशा है। और उस समय जब संसार सोया पड़ा है तब। तो ये 3 बैलेंस है शारीरिक, फिर है मानसिक में 2, एक तरफ है बुद्धि और एक तरफ है भावना, विवेक और भावना का बैलेंस, लॉजिक एंड इमोशंस। बहुत ज्यादा भावुक भी नहीं बन जाना है, बात बात पे दुखी, बात बात पे उदास, रोना रूठना रूठना। रोना किस किस को आता है ज्यादा? बाकी लोग आग बंद कर लो। किसी ने जरा कुछ कहा कि आंखों से आंसू। एक बहन आई थी हमारे पास ओपीडी में, हमने कहा क्या तकलीफ है, वो कहती थी रोना आता है। अच्छा रोना आता है, हमने कहा कितनी बार? उसने कहा 28 बार एक दिन में, गिन के रखा है डॉक्टर को बताने के लिए। अवसर की ही तलाश में है आंसू कि कोई कुछ तो बोले और मैं रो दूं। सब लोग अच्छा कहते, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तब तक ठीक, इतनी खुशी नहीं। 10 लोगों ने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा चिंतन ये वो सब अच्छा है, और किसी ने कहा तुम्हारी ये बात ठीक नहीं, बाकी सबको बाहर कर दिया और उसको पकड़ लिया। अब दिन रात सोचो उसके विषय में, इसने ऐसा क्यों कहा। दुख की तलाश है आत्मा को, दुख के बिना बेचैनी है कि सब सुख दे रहे, क्या बात है, आज कांटा क्यों नहीं चुभ रहा, कांटा चुभा अब पकड़ो उस कांटे को और रात भर सोचो, देखो खून बहता हुआ। और फिर उसकी चर्चा, फिर दूसरा भी मिल जाएगा, वो ऐसा ही करता है, मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, उसका स्वभाव ही ऐसा है। व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। क्या करो? योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। हमारे हॉस्पिटल में एक बहन है, वो कहती है हमारी आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप भी उसे सुखा नहीं सकती। भावना और एक तरफ है विवेक, तर्क, लॉजिक, रीजनिंग। जो बहुत भावुक है उनको आवश्यकता है तार्किक बनने की, लॉजिशियन बनने की, मैथमेटिशियन बनने की, सोचो इसमें नुकसान क्या, इसमें फायदे क्या, ये जो संबंध बना के रखा है, ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो दोस्ती है, इसमें क्या क्या नुकसान है, क्या पाया इस दोस्ती में, दुख, फ्रस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशंस जो पूर्ण नहीं होती है, नुकसान निकालो, दोष दृष्टि निकालो। उस व्यक्ति जिसमें हम फंसे हैं या उस संबंध में जिसमें हम फंसे हैं उससे अलग कर देना है, क्योंकि इस संबंध में रोना रूठना रूसना यही सब है। परमानेंट डिसीजन लेना है कितना कंटिन्यू रखना है। हर संबंध का भी अपनी एक जर्नी है, जरूरी नहीं कि एक ही संबंध जीवन भर निभाया जाए। मगर उस संबंध से दुख हो रहा है और इस संबंध हमें भगवान से दूर लेके जा रहा है, योग में ही बाधा है और नाम सेवा का दे रहे हैं और अंदर जो फ्रेंडशिप चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस है, हटा दो उसको। no need of such friendship that takes us away from God. तो तर्क को लाना है जहां भावना में बह रहे हैं, और जो लोग बहुत ज्यादा तार्किक है, नॉन इमोशनल, उनको थोड़ा भावना को लाना है, वो थोड़ा आसान है। और ऐसे लोग कम है जो ज्यादा सोचते हैं, हर चीज के बारे में सोचते हैं, जो भी कहा गया उनको विचार चलाते हैं, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक फिलोसोफर टाइप का व्यक्ति था, उसे जबरदस्ती पकड़कर आर्मी में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि आर्मी में लोगों की आवश्यकता थी, पर वो दार्शनिक था। उसे ड्रिल सिखाई गई अबाउट टर्न, राइट टर्न, तो वो सब टर्न हो गए, वो नहीं टर्न हुआ। उसको कहा कि तुम क्यों नहीं टर्न होते, वो कहते मैं सोच रहा हूं मैं राइट क्यों टर्न करूं, क्या क्या फायदे होंगे अगर मैं राइट टर्न करता हूं तो। उसे कहा लेफ्ट टर्न, तो वो नहीं मुड़ा, लेफ्ट अगर टर्न करता हूं तो क्या क्या हो सकता है, उसके विषय में वो सोचने लगा, तर्क। फिर आर्मी के मास्टर ने सोचा इसका काम यहां नहीं है, इसको किचन में डाला जाए, ऐसे लोगों को किचन ठीक है, किचन की सेवा दे दी उसको भोजन बनाने की। तो वहां पर उसको मटर छीलने को कहा गया, तो उसने मटर छीले, और मटर अलग अलग एक इसमें रखने थे, मटर तो छीले, पर बाद में वो ये सोचने लगा छोटे वाले कहां रखूं और बड़े वाले कहां रखूं, क्या दोनों को एक साथ रखा जाए, इसमें फायदा ज्यादा है या अलग अलग रखने में फायदा ज्यादा है, फायदा किसमें ज्यादा है। तर्क, लॉजिक, रीजनिंग। कई लोग लॉजिक में बहुत ज्यादा चले गए, वहां पर भक्ति में जब थे तब बहुत आंसू बहाते थे भगवान के लिए, जब से ज्ञान में आ गए आंसू सूख गए, वहां भक्ति में चिल्लाते थे, रोते थे, हे प्रभु हे प्रभु, यहां शुरुआत है मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे वो प्रेम ही खत्म हो गया, ये तीसरा बैलेंस। तो ये हो गए, ये पहला मानसिक में। दूसरा है मास्टर और चाइल्ड का बैलेंस, बालक और मालिक का बैलेंस। जब भी मीटिंग हो, मास्टर बनकर अपना डिसीजन, अपना ओपिनियन देना है, पर जब फाइनलाइज हो जाए तो ये नहीं सोचना है हमने इतनी अच्छी आइडिया दी है तो इन्होंने मानी नहीं, तब छोटा बनकर स्वीकार कर लेना है। ये नहीं कहना कि हमारी आइडिया तो सबसे बेस्ट थी, इतना अच्छा प्लानिंग, और हमारा प्लानिंग नहीं मानते, हम नहीं जा रहे, जाओ करो जो करना है, हम तो चले, जो सेवाएं करनी है करो, हमारा नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं यहां होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल भट्टी यहां होनी चाहिए, हमने कहा, वो कह रहे हैं यहां नहीं वहां होनी चाहिए, जाओ हम नहीं आएंगे, हमारा नहीं माना। तो सेकंड टाइप ऑफ मेंटल बैलेंसेस, मास्टर चाइल्ड, कहां बच्चा बन जाना और कहां मास्टर बन जाना। अहंकार को नहीं लाना है, जो जितना अहंकारी होगा उसको चाइल्ड बनने में उतनी ही मुश्किल होगी। जब हमने कुछ सोचा, हमने कुछ प्लानिंग किया और हमारा नहीं माना गया, वहां पर छोटा बच्चा बन जाना। तो ये एक दूसरे प्रकार का बैलेंस है मेंटल में। फिर है स्पिरिचुअल बैलेंस। स्पिरिचुअल में सबसे पहला जो सभी जानते हैं, ज्ञान और योग का बैलेंस। फर्स्ट हमने देखा है लोगों की रुचि योग की तरफ ज्यादा है, ज्ञान की तरफ, ज्ञान केवल मुरली में जाना और सुनना और पॉइंट्स लिखना, इसी को ज्ञान समझते हैं, बस इतना कर लिया फिनिश। पर ज्ञान इतना सहज नहीं, सरल नहीं, ज्ञान में की गहराई में जाना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मनन करना, ज्ञान का अध्ययन करना, उस विषय में और पढ़ना, उसको जानना। बाबा ने कहा है सागर की गहराई में जाओ और मोती लाओ, हम ये नहीं कह सकते अब क्या चिंतन करे, करने वालों ने सब करके रखा है, किताबें लिखने वालों ने किताबें लिख के रखी है, इतनी किताबें यज्ञ में है, इतनी क्लासेस है, अब कुछ रहा ही नहीं है करने को, ये हम नहीं कह सकते। अभी तो बहुत कुछ रहा है, वो किसी और ने किया है, हमने कहां किया, वो उधार का चिंतन है, हमारा कहां है, बोरोड जर्निंग है वो। ज्ञान और दूसरी तरफ है योग। कई लोग योग योग योग, पर यह भी है कि बिना ज्ञान की समझ के योग भी तो नहीं लगता, जिसे वो योग कह रहे शायद वो योग है ही नहीं, योग का भ्रम है। और दूसरी कैटेगरी है वो थोड़ी कम है, जो चिंतन में बहुत ज्यादा चले गए और योग छूट गया है, खाली चिंतन 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 चिंतन, बस योग नहीं हो रहा है। योग अर्थात शरीर से डिटैच हो जाओ, वो योग अशरीरी बन जाना, उसको याद करना, अनुभव करना योग के नए नए। तो दोनों ही चीजें चाहिए, ज्ञान की भी पराकाष्ठा और योग की भी पराकाष्ठा। इधर नहीं चले जाना है और ना ही इधर चले जाना है। जो योग ज्ञान में ज्यादा चले गए चिंतन में, उन्हें बैठकर योग करने की ज्यादा आवश्यक है। और जो योग ही योग कर रहे हैं और ज्ञान छूट गया है, मुरलियों में बाबा ने कहा है सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, डायरी में लिखना और वापस आना, ये है पुरानी चाल। ये जो कहा गया क्यों कहा बाबा ने, किस लिए कहा, इस पॉइंट का क्या रहस्य है, क्या राज है, और क्या क्या अर्थ हो सकता है इसका। टू गो एंड एंटर इन टू द डेप्थ ऑफ नॉलेज इज नॉलेज, नॉलेज फुल बनना अर्थात स्वरूप बनना चिंतन करते करते। इसके लिए ये पहला स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल बैलेंस में पहला बैलेंस है ज्ञान और योग का, दूसरा है योग और सेवा का। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सबको सेवा में है, और सेवा में कई लोग इतने चले गए कि योग ही छूट गया, अमृत वेला छूट रहा है, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि खुशी होती है कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु योग छूट रहा है उस सेवा में, और जिस सेवा में योग नहीं वहां संघर्ष होगा, टकराव होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी, आर्गुमेंट होगी, डिबेट्स होगी, संस्कारों में जबरदस्त टकराव, रूठना रूसना होगा। एक अव्यक्त वाणी 82 की, जिसमें बाबा ने कहा है सेवा करते करते तुम्हें संसार से वैराग आ जाएगा, इसलिए सेवा में बिजी रहो, और साथ में ही कह दिया कि सेवा में ही वैराग नष्ट भी हो जाएगा यदि योग युक्त नहीं होंगे तो। सेवा ज्ञान और योग से दूर ले चली जाएगी, किसी जंगल में भटका देगी यदि वो सेवा योग युक्त नहीं, यदि वो सेवा श्रीमत अनुसार नहीं, यदि वो सेवा के बीच में ज्ञान कटार नहीं, काम कटार चलेगी, मोह की कटार चलेगी, वासना की कटार चलेगी। इसलिए वर्किंग आवर्स को कैसे योग युक्त बनाया जाए, इसकी हर एक को प्लानिंग करनी है। ट्रैवलिंग आवर्स कैसे उसको योग युक्त बनाया जाए, उसकी प्लानिंग करनी है। हमें याद है जब हम बहुत पहले 8 साल पहले मुंबई में थे, तो हमको एको का कोर्स करना था, 2DA को, तो उसके लिए हम अंधेरी से, लोकल से, पहले दादर और दादर से फिर वो जगह हम भूल गए जहां ग्लेनमार्क का वो केंद्र है, दूसरी ट्रेन बदल कर वहां, और ये रोज सुबह जाना और रोज सुबह 4 घंटे में आना, और शाम को फिर हॉस्पिटल की ड्यूटी, रात में किसी और हॉस्पिटल में ड्यूटी। ऐसी जबरदस्त दिनचर्या थी, क्योंकि हमारा लक्ष्य था हमें सब कुछ सीखना है इससे पहले कि हम ग्लोबल जाए, मधुबन में जाए। इसके लिए दो दो तीन तीन जगह पर काम करते थे, तो वो जो हमारा ट्रैवलिंग पीरियड था, हमने एक लक्ष्य रखा था कि हमें एक क्लास रोज सुननी है। रूम से निकलकर पैदल स्टेशन, ईयरफोन और वो लोकल में एक दो तो छोड़ देनी पड़ती थी, इतनी भीड़ उसमें। फिर बैठना, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, वो केंद्र तक पहुंचने तक एक ज्ञान योग की क्लास, आते समय वही क्लास रिवाइज, फिर से वही। तो वो जो कोर्स था 3 मास का था, उस 3 मास में लगभग 150-200 से भी ज्यादा क्लासेस हमने सुनी थी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना था किसी भी तरह से। तो ट्रैवलिंग को योग युक्त बना देना, वर्किंग आवर्स जो है, जहां हम काम कर रहे हैं उस स्थान के वाइब्रेशंस को चेंज करने की जिम्मेवारी हमारी है। किस तरह का एटमॉस्फेयर है, कैसा बॉस है, कैसे कॉलीग्स है, कैसे साथी है, कैसे जूनियर्स है, उन सब कॉन्फ्लिक्टिंग प्रतिकूल एडवर्स सिचुएशन के बीच में रहते हुए हमारा योगी जीवन चालू रहे। बाबा के महावाक्य है, सबको लिख लेना है अपनी डायरी में, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। स्थान नहीं बदलेगा, वही रहेगा। व्यक्ति नहीं बदलेंगे, जिनके साथ काम कर रहे हो सब विरोधी, वही रहेंगे। ना परिस्थिति बदलेगी और भयंकर होगी, तुमको बदलना है। जब तुम बदल जाओगे तो सब बदल जाएगा। कोसते नहीं रहना है ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ये समझता नहीं, हम ज्ञानी वो अज्ञानी, हम भगवान को जानते वो नहीं जानते, वो शूद्र हम बहुत ऊंच, संसार के लोगों के कांटेक्ट में आते हुए इस तरह के संकल्प आते हैं, ये विकारी खाना खाते हैं, हम अच्छा खाते हैं, हाथ का योग युक्त। अध्यात्म के मार्ग में भी अहंकार आ जाता है, हम ज्ञानी हैं, ये अज्ञानी है। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, एक माता जिसके पति ने 20 साल तक उसको सताया, मारा पीटा, ब्रह्मा कुमारी में जाना ही नहीं बिल्कुल, बहुत झगड़े किए, और 20 साल के बाद वो ज्ञान में आ गया। तो 20 साल तक जब वो विरोध करता था तब भी देव कुल की आत्मा थी। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं दूसरों को कि ये नॉन बीके है, ये शब्द कहां से आ गया? किसी मुरली में है आज बाबा नॉन बीके से मिलने आए हैं, कोई अव्यक्तवाणी कहीं नहीं है। हमेशा यही समझना ये सब देव कुल की आत्मा है, ये समझना ये भावी होवनहार देवता है, ये मत कहना ये अज्ञानी है, ये मूर्ख है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये विरोध करते हैं, ये बुरे लोग हैं, ये नॉन बीके है, वो अज्ञानी और तुम ज्ञानी, ये भी देव कुल की आत्मा है, उनके प्रति यही संकल्प। तो कर्म का जो पीरियड है उसको क्या करना है, योग युक्त बनाना है, ड्रिल का अभ्यास करना है, छोटे छोटी ड्रिल्स ढूंढो, आत्माभिमानी स्थिति। स्पार्क की एक बहुत अच्छी किताब है, स्पार्क में मिलेगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, अनुभूतियां, पढ़ी है किसी ने? इतनी बड़ी किताब है जिसमें 108 केवल ड्रिल्स लिखी हुई है, केवल ड्रिल्स, और हरेक ड्रिल अलग अलग है। कोई ड्रिल में मैं फरिश्ता पहाड़ पर जाकर बैठा हूं और वहां से कुछ कुछ कर रहा हूं, किसी ड्रिल में, हर ड्रिल अलग अलग है, क्योंकि योग भी वही वही योग नहीं करना है जो 10 साल पहले हमने बहन जी से सीखा था, मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। योग में भी नवीनता, तो बिजिएस्ट पीरियड में योग करने का अभ्यास करना, अति के समय अंत का अभ्यास करो, अव्यक्त महावाक्य बाबा, अति अर्थात सेवा की अति में अंत का अभ्यास अर्थात आवास से परे का अभ्यास करो। 87 की अव्यक्तवाणी में अति में अंत का अभ्यास, तो ये स्पिरिचुअल बैलेंस में दूसरा बैलेंस। तीसरा बैलेंस है प्रेम और शक्ति का, लव एंड पावर। कहां लवफुल बनना है, कहां पावरफुल बनना है। किसी व्यक्ति के साथ बहुत लवफुल है परंतु वो फायदा उठा रहा है, शोषण कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और हम बंधन में बंधे हैं और हमने अपना रिमोट उसके जेब में दे रखा है। उसकी जब इच्छा तब हम रोते हैं, तब हम खुश होते हैं। हमारे इमोशंस को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। वहां पर पावरफुल बन जाना है, वहां लवफुल वाला स्वरूप नहीं दिखाना है, विकराल रूप धारण करना है और इस तरह के संबंध विच्छेद, कट ऑफ सच यूजलेस बॉन्ड्स। तो लव भी हो पर पावर भी हो। ऐसा नहीं कि दूसरा समझ ले हम बहुत कमजोर है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने विदेश में पूछा था कि तुम स्त्रियों के लिए इतना अच्छा कहते हो, क्यों नहीं स्त्रियों के सपोर्ट के लिए तुम कर तो कुछ करो कि जो अबलाए है, जो कमजोर है, उनके लिए आपका क्या कहना है, उन्होंने उनको कैसे हम मदद करें स्त्रियों को, नारियों को। तो उन्होंने आंसर दिया, हैंड्स ऑफ, नो नीड टू सपोर्ट देम, दे कैन सपोर्ट देमसेल्व्स, हु आर यू टू सपोर्ट देम। तुम कौन हो अपने आप को ज्यादा समझने वाले और उनको कमजोर समझने वाले। दे आर पावरफुल देमसेल्व्स, वो अबला नहीं, वो सबला है, वो खुद ही शक्ति रूपा है। वो संसार को सपोर्ट करेगी, तुम्हें उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं और ना ही हम कर सकते। डोंट इवन थिंक ऑफ दैट। तो एक तरफ शक्ति, दूसरी तरफ प्रेम। पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना विकराल रूप धारण करो हमेशा कि लोग भागने लगे दूर, तेज तर्राक, झगड़े ही झगड़े सुबह से शाम तक, जो मिले उससे झगड़े। प्रेम में ही स्वरूप हो, आपस में प्रेम, पारस्परिक संबंधों में मिठास, कड़वाहट ना हो। जिससे झगड़ा हो गया वो उधर से आ रहा है, हम इधर से आ रहे हैं, इधर हमारा मुंह, उसका मुंह उधर, और रोज मिलते हैं, मुश्किल है। और ब्राह्मण परिवार में तो झगड़ा मत करके बैठ जाना, क्योंकि इसी परिवार में रहना है। जिससे झगड़ा वो सामने ही मुरली क्लास में आके बैठेगा तो मुरली कम दिखेगी, वही दिखाई देगा। फिर मुरली दूर रहेगी, वही दिखाई देगा। जैसे एक भाई ने अनुभव सुनाया था, सेंटर के किसी दूसरे भाई ने कहा मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, तो इसको लगा कि देना चाहिए, दे दिए, और जिसने लिए वो भूल गया देना, और रोज सेंटर पे मिलना चालू है। ये भाई योग में बैठा है, वो दूसरा जिसने लिए वो सामने आके बैठता है, तो इसको केवल 5,000 दे 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 दे, और वो भूल ही गया, उसको याद ही नहीं। फिर अभी योग की कमेंट्री तैयार की, उसको इमर्ज करके दे दे भैया। मांगना तो अच्छा नहीं लगता, झगड़ा बिगड़ा नहीं कर देना है। इसी तरह से प्रेम में ही स्वरूप, परंतु ऐसे संबंध जो हमें विकार की ओर घसीट सकते हैं, वो प्रेम जो प्रेम कम दिखाई दे रहा है, उसमें विकार के एलिमेंट्स तत्व आ रहे हैं, उसको शक्ति रूप धारण करना है वहां। तो ये एक बैलेंस। दूसरा है लव एंड लॉ। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ कायदे कानून, यज्ञ के नियम। ऐसे नहीं कि कोई हमारा पुराना दोस्त मित्र मिल जाए ज्ञान में आने के पहले का, और जिसके साथ हम बहुत घूमते थे, अब कहे वो चलो अब थोड़ा घूम के आते हैं, मूवी वगैरह जाते हैं, तो क्या कहेंगे? वो हमारा पुराना मित्र है, दोस्त है, जब हम ज्ञान में नहीं थे, अब हम ज्ञान में आ गए, उसे पता ही नहीं हम ज्ञान में आ गए, और वो अचानक मिल गया और कहते हैं चलो वही करेंगे जो पहले करते थे, तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? नो, उसका दिल टूट जाएगा। हमारा जिगरी दोस्त है, विदेश था, अभी आया है, दूर कहीं था, अब लौट के आया है, तो नो कर देंगे तो वो तो फिर ब्रह्मा कुमारी से ही रुड़ जाएगा। वो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी ने मेरा दोस्त छीन लिया, मैं माफ नहीं करूंगा ब्रह्मा कुमारियों को। क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसकी बात मान लेंगे? श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देना, उससे वो खुश हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ चलो चलो चलो, बाबा को तो पता है हमारा दोस्त है पुराना, फिर बाद में ज्ञान भी सुनाएंगे, अभी थोड़ा मूवी जाके आते हैं, पर्दे पर जो दिख रहे हैं उनको भी आत्मा समझेंगे। ये आत्मा, वो आत्मा, क्या करेंगे इसके बारे में सोच के बताना। श्रीमत छोड़कर किसी को सुख देना, लॉ तोड़ देना, दुख होगा लास्ट में। जो लॉ बने हैं बने हैं, सिनेमा अर्थात सिन की मां, पाप कह दिया है बाबा ने, तोड़ो और देखो क्या होता है। तीसरा, इसमें तीसरा लव, लविंग एंड डिटैच। लव में तीसरा, लव के तीन है, लविंग एंड डिटैच, प्यारापन और न्यारापन का बैलेंस, कहां एकदम से डिटैच हो जाना है और कहां एकदम प्यारा बन जाना है, इसका बैलेंस। एकदम डिटैच भी नहीं हो जाना है कि लोगों को लगे ये तो एकदम सन्यासी टाइप है, और इतने लविंग भी नहीं हो जाना है, इतना इन्वॉल्व भी नहीं हो जाना है किसी में कि लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा हो जाए, हमारी अपनी एक अस्तित्व हो, हमारे अपनी एक पर्सनैलिटी हो, किसी की हिम्मत ना हो ब्रह्मा कुमारी अर्थात अनटच्ड हाथ लगाने की हिम्मत ना हो किसी को। अगर लगाता है, हिम्मत हमने ही दी है। लविंग और डिटैच। अगला बैलेंस साधन और साधना। साधन और साधना, साधनों में इतने डूब नहीं जाना कि साधना विदा हो जाए जीवन से। और यज्ञ में वो समय जब कम से कम साधन थे, सबसे ज्यादा से ज्यादा साधना तब हुई थी। अब साधन बहुत ज्यादा है, जितने अधिक साधन, साधना अपने आप कम हो जाती है। ये एक अध्यात्म का नियम है, चाहे कोई कितना भी ध्यान रखे, पर एक मौलिक नियम है कि जो योगी कई साधनों के बीच में रह जाता है, धीरे धीरे उन साधनों से आसक्ति लगाव उत्पन्न चालू होता है, उसकी साधना धीरे धीरे सूक्ष्म में कम होती है। इसके लिए जिन साधनों का हमें आवश्यकता नहीं, एक मोबाइल, दो मोबाइल, चार मोबाइल, ये ग्रुप, वो ग्रुप, एग्जिट, अनफ्रेंड, ये मीडिया, वो मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड एक ऐसा अंधकूप है कि जिसमें व्यक्ति भटक जाता है। तो सभी योगयुक्त होकर बैठेंगे। अगला बैलेंस 12वां, स्वस्थिति और सेवा। स्वस्थिति और सेवा, अव्यक्त मुरलियों में आया है, सेवा छोड़ दो पर खुशी नहीं छोड़ो। ऐसी सेवा जिसमें खुशी नष्ट हो रही है, समाप्त हो रही है, वो सेवा छोड़ दो पर खुशी नहीं छूटनी चाहिए। सेवा करते हुए हम हमेशा कहते हैं स्थिति की कीमत 1 करोड़, सेवा 1 लाख। सेवा, सेवा से भी पहले और एक चीज, संबंध 1,00,000 और सेवा 1,000। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है स्थिति की, दूसरी प्रायोरिटी है व्यक्तियों की। किसी की वजह से कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसको हमने बहुत डांटा, व्यक्ति चला गया, वो माता चली गई, वो दोस्त चला गया, वो कुमार चला गया, वो बहन चली गई, वो कुमारी चली गई, ये बहुत बड़ा नुकसान है। थर्ड नंबर पर है सेवा, प्रायोरिटी वाइज। स्थिति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि सेकंड नंबर पर संबंध है। व्यक्ति वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है। सेवाएं होती रहेगी। विदेश की एक बहन ने अनुभव सुनाया था, एक बार कुछ बड़ी रकम किसी छोटी बहन को दी गई और उसके द्वारा वो गुम हो गई और वो पैसे सारे भाई बहनों के थे और उसको इतना डांटा गया और डांटने वाली बहन को भी लगा इतना नहीं डांटना चाहिए था शायद, और बाद में उसको ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आज 30 साल हो गए उस बात को, पर जो संबंध में क्रैक पड़ी थी वो अब भी वैसी ही है, वो ठीक नहीं हो पाई। व्यक्ति नहीं आएंगे, वस्तुएं आ जाएगी, पैसे आ जाएगी, बाकी सब आएगा, जो छोड़ के चला गया वो नहीं आएगा। फिर सेकंड प्रायोरिटी संबंध है, रिलेशनशिप, इवन इन द वर्क जहां आप काम करते हैं। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अवर स्टेज, सेकंड रिलेशनशिप्स, थर्ड इज सर्विस, ड्यूटी, जॉब। जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, एक वेश्या आती है, सारे शिष्य बैठे हैं और वो वेश्या एक बहुत कीमती इत्र लेके आती है और उसके चरणों पर डालती है और अपने बालों से चरणों को पोंछती है। तो एक शिष्य कहता है, जुड़ास, जो कि बाद में उसे धोखा देने वाला है, वो कहता है इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती इत्र, अगर इसे सेवाई करनी है तो इसे बेचकर पैसों से गरीबों की सेवा करनी चाहिए थी, तो वो सेवा होती गरीबों की। ये इतना कीमती, कॉस्टली परफ्यूम पैरों पे डालने की क्या आवश्यकता है। जीसस कहता है गरीब तो हमेशा रहेंगे पर मैं नहीं रहूंगा, इसके लिए इसको करने दो, वो जो कर रही है उसका प्यार है वो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। Poor would always be there, but I shall not be again. व्यक्ति वस्तुओं से, पैसों से, चीजों से, धन से, संपत्ति से, सेवा से, वैभव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। रूठ गया जो रूठ गया, फिर नहीं आता है वो, कितना भी मनाओ वो क्रैक रह जाएगी। और इससे पहले कि किसी को डांट दो, इससे पहले कि किसी पर गुस्सा उतारो, आज कहा ना वरदान में 2 नंबर रोब, सूक्ष्म अवज्ञाओं में पहली अवज्ञा अमृत वेला, दूसरा रोब, क्रोध नहीं करते पर रोब, फिर भारी होगा दिमाग। तो स्वस्थिति शक्तिशाली हो, और दूसरी तरफ है सेवा। ये 12वां, 13वां, सीरियसनेस एंड एंटरटेनिंग नेचर, गंभीरता और रमणीकता। दोनों में से किसकी कमी है, गंभीरता की कि रमणीकता की? रमणीकता तो बहुत है, सभी रमणीक है, पर इस रमणीकता में गंभीरता खो गई है। योगी अर्थात जो गंभीर है, योगी अर्थात नॉन, जो सीरियस है, नॉट अ लाफिंग स्टॉक। और सीरियसनेस की बहुत बड़ी परिभाषा है, केवल नॉट लाफिंग, नॉट स्माइलिंग, स्टेइंग सीरियस, चेहरे पर गंभीर भाव, हंसना कम। एक मुरली में बाबा ने कहा है ज्यादा हंसी मजाक भी विकार का अंश है। वह हंसी मजाक जिसमें विकार की वायु है, क्योंकि वो हंसी मजाक में ही दूसरों पर कमेंट्स चालू होते हैं, परचिंत आ जाता है। तो थोड़ी सी गंभीरता जीवन में लानी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि इतना गंभीर हो जाओ कि रमणीकता खो गई। योगी अर्थात जिसके जीवन में बैलेंस हो, हंसना ऐसा हो कि उसकी आवाज ना हो, जैसे मम्मा चलती है मम्मा तो बाबा कहते थे जमीन को खुशी होती है, आवाज नहीं होता है चलने का, सोती है तो ऐसा लगता है कोई योगी सो रहा है, हंसते तो फूल झरझर गिरे। क्या गिरते हैं जब हम हंसते हैं तो क्या गिरता है? जोर जोर से अट्टहास करना, लाफ्टर। श्री राम मुस्कुराते हैं, अट्टहास। जोर जोर से कौन हंसता है? रावण। तो हंसे तो फूल गिरे जर्जर। हमारी हंसी में भी प्यूरिटी के प्रकंपन हो, किसी की निंदा से खुश हो, किसी की ग्लानी से खुश होकर हंसना, ये ब्राह्मणों का स्वभाव नहीं। तो 13वां अगला बैलेंस है लौकिक और अलौकिक का, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक परिवार, अलौकिक परिवार और लौकिक परिवार। कल ही आने से पहले मधुबन में हम लोगों का जो ग्रुप थे उसमें हम लोगों ने एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, स्नोबॉल इफेक्ट। उसमें 4 ग्रुप बनाए थे और हमारा जो ग्रुप था उसको एक पिरामिड दिया था ऑर्गेनाइजर जो हमारे ग्रुप में है। उसमें लिखा था लौकिक से होने वाले फायदे और नुकसान और अलौकिक से होने वाले फायदे और नुकसान, इसका एक पिरामिड पर लिखना था। वो एक ग्रुप एक्टिविटी थी। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। जो बहुत ज्यादा अलौकिक में चले जाते लौकिक से घृणा नफरत हो जाती है, लौकिक वाले जो है दुश्मन दिखने लगते हैं, सांप दिखने लगते हैं जो हमें अध्यात्म में जाने से रोक रहे हैं और हम उनसे दूर भागना चाहते हैं। बिल्कुल उनके संपर्क में नहीं, उनसे बात नहीं, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, ऐसा भयंकर वैराग। और कभी कभी लौकिक की सेवा करते 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 तोड़ निभाते निभाते इतना मोह उनमें हो जाता है कि उधर कुछ हुआ तो हलचल, उधर बीमारी इधर हलचल, उधर स्वजनों की मृत्यु और इधर टोटल डिप्रेशन। सारा ज्ञान और आत्मा परमात्मा और आत्मा के अमरता के हमने जितने कोर्स कराए, ये आत्मा अमर है, वो सब गया, हमारा अपना कोई चला गया। बीमारी मृत्यु आर्थिक हलचल, हमारी हलचल। टू मच अटैचमेंट टू लौकिक, वो भी बीच में डिटैच। तो ये एक लौकिक अलौकिक का बैलेंस। दूसरा है कथनी करनी का बैलेंस। जो हम बोल रहे हैं वो हम करें। महाराष्ट्र के एक संत कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदना बाहुले, अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करी न। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो करता है जो बोलता है, उसके आंगन को अपने शरीर से झाड़ूंगा मैं। भाषण देना आसान है, बोलना आसान है, परंतु करके दिखाना तपस्या है। तो कथनी और करनी। फिर है सिंप्लिसिटी एंड रॉयल्टी। एकदम सिंपल परंतु रॉयल भी। हमारे वस्त्र, हमारे ड्रेस सिंपल हो, ऐसा ड्रेस ना हो कि कोई हमारे पीछे पागल हो जाए। विनोबा भावे ट्रेन में सफर कर रहे थे, देखा एक स्त्री है जिसने गजरा लगाया है। गजरा पता है पीछे लगता है। तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा, क्या ये गजरा तुम देख सकती हो? उसने कहा नहीं। तो फिर किसके लिए लगाया? सिंप्लिसिटी, सादा जीवन, उच्च व्यवहार। और दूसरा रॉयल्टी, रॉयल हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए बाबा ने कहा है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हाथ में मुरली केश खुले हो तुम हो राज ऋषि। केवल तुमको देखकर ही, तुम्हारी अलौकिकता को देखकर ही आत्माएं को तीर लगेगा परमात्मा प्रेम का। पूछेंगे उनके मन में ऐसा अनुभव हो कि कोई जगदम्बा कोई शक्ति रूपा वहां खड़ी है। साधारण स्त्री नहीं है, शक्ति खड़ी है। नारी नहीं है, शक्ति है, मां रूपा है। उस समान में स्थित होना है, मैं जगत माता हूं, संसार के कल्याण के लिए आई हूं। वर्तमान में दो ऐसी स्त्रियां हैं, एक जया किशोरी और दूसरी चित्रलेखा देवी। ये दो भागवत कथा करती है बहुत छोटेपन से, जब वो 6 वर्ष 7 वर्ष की थी। अभी उनकी उम्र 25 वर्ष के अंदर है दोनों। सारे भारत भर में कथाएं करती है, परंतु लोग उनको देवी के रूप में देखते हैं, शक्ति के रूप में देखते हैं। और पर्सनल में वो कहती है, मैं तो बहुत साधारण सी लड़की हूं, जैसे बाकी लड़कियां माँ बाप से लड़ती है या झगड़ा करती है, उसको बर्थडे मनाना है, नम्रता भी बहुत है, वैसे मैं भी हूं। परंतु जैसे वो स्टेज पर होती है तो हजारों की सभा होती है, 40,000 50,000 लोग झुक जाते हैं चरणों में। विकार की दृष्टि तो बहुत दूर, मार ही देखते हैं उसको। माताएं झूमती है, पागल हो जाती है। ऐसा परमात्मा भक्ति की बातें हैं तो। परंतु संसार में इस कलयुग में भी इस समय भी ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो इतनी कम उम्र की है। चित्रलेखा देवी और जया किशोरी, उसका नाम ही किशोरी रखा लोगों ने। वो कहती है, मैं साध्वी नहीं हूं, शादी वो कहती है करेंगे बाद में, ऐसी भी कहती है। कथावाचक वो तो कहती है, मैं खाली कथावाचक हूं, पर लोग उसे देवी और अवतार ही समझते हैं। तो ये तो आज भी कहा ना बाबा ने, भक्ति पूरी फिर ज्ञान शुरू। हम वह कुमारियां हैं जिन्होंने भगवान को जाना है। आज की मुरली में अच्छा से पहले लास्ट लाइन बाप कहते हैं कुमारियों को, क्या हम पवित्र है, बोलो हम पवित्र है और भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। ऐसा नशा, ऐसी पवित्रता, ऐसी अनटच्ड ब्यूटी, प्यूरिटी हमारी हो तो ऐसे। ये टोटल 16 टाइप्स ऑफ बैलेंस। पहले शरीर की 3 कौन कौन से देते? हाँ, सबसे पहला फिजिकल में भोजन, स्लीप एंड एक्सरसाइज। मेंटल में 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस, मास्टर एंड चाइल्ड, और दूसरा लॉजिक एंड इमोशंस। ये मेंटल में 2, फिर स्पिरिचुअल में 11। सबसे पहला ज्ञान और योग, 2 इसकी जोड़ी बना लो, ज्ञान और योग, और दूसरा योग और सेवा, ये 2। फिर 3 सेवा, प्रेम से संबंधित, लव लॉ, लव पावर, लविंग एंड डिटैच्ड, ये 3। उसके बाद में साधन साधना, स्वस्थिति, सेवा, गंभीर एंटरटेनिंग, सीरियसनेस एंटरटेनिंग। उसके बाद में लास्ट 3 लौकिक अलौकिक, कथनी करनी एंड लास्ट सिंप्लिसिटी एंड रॉयल्टी। तो दीज आर 16 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। यहां से जाने के बाद अपनी डायरी में जिन्होंने नोट नहीं किया वो सब नोट करेंगे इसी अनुसार, इसी क्रम में, और डेली इसका और विस्तार करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे इसको अपने जीवन में लाया जाए। अच्छा, ओम शांति।